आयशा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर और उर्वशी के ताने देने पर वसुधा को एहसास हुआ कि अभिमन्यु और इशिका अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। उन्होंने बातों ही बातों में अभिमन्यु को इशिका के करीब जाने का कहा और उसे वो खाने खिलाए जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक फील करें। वसुधा ने जबरदस्ती इशिका और अभिमन्यु को कमरे में भेज दिया था। कमरे के अंदर आते ही अभिमन्यु को गर्मी महसूस होने लगी। ऐसे लग रहा था वसुधा ने कोई चाल चली है और उसके खाने में कुछ मिला दिया था। अभिमन्यु ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और जाने कि उसने इशिका को बेड पर हल्का सा धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया था। इशिका अभिमन्यु को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु के होठ इशिका के होठों पर थे। वो इशिका को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। इशिका समझ नहीं पा रही थी अभिमन्यु ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अभिमन्यु को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कई दिनों से वो दोनों साथ रह रहे थे तो उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। कुछ देर बाद इशिका ने अभिमन्यु को खुद से दूर करने के बजाय उसका साथ देने लगी। इशिका के हाथ अभिमन्यु के बालों में चल रहे थे तो वहीं अभिमन्यु के हाथ उसकी बैक पर थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए काफी डीपली किस कर रहे थे। किस करते हुए अभिमन्यु जब उसकी नेक पर आया तो इशिका अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अभिमन्यु को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दूर धकेला। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और अभिमन्यु तुरंत उससे दूर हो गया। इशिका जल्दी से उठकर बैठी। अभिमन्यु ने अपने सिर को पकड़ा और कहा, शायद मुझे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तभी थोड़ा बेहतर लगेगा। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया और वो जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया। वहीं इशिका के गाल भी लाल हो रहे थे। इशिता ने जल्दी से अपने पैंट के पॉकेट से एक दवाई निकाली और उसे लिया। उसे लेने के बाद इशिका को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इशिका ने एक नज़र आईने की तरफ देखा तो उसके गाल लाल थे और आंखें हल्की नम थीं। वो खुद को देख भी नहीं पा रही थी। उसकी गर्दन पर हल्का सा लाल निशान भी बन गया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने अभिमन्यु को रोकना बंद कैसे कर दिया? और यकीन नहीं हो रहा कि उसकी करीबी मुझे अच्छी लग रही थी, इशिका ने अपने मन में कहा। लगभग 20 मिनट बाद अभिमन्यु बाथरूम से बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था। बाहर आते ही अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी, दैट वॉज नॉट मी। मैं शायद बहक गया था। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, अचानक इशिका ने कहा और फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसका कुछ और ही मतलब निकल रहा था। अभिमन्यु को अभी भी पूरी तरह राहत नहीं मिली थी। वो अंदर ही अंदर गर्मी महसूस कर रहा था। तभी इशिका ने बात बदलते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको मिसेस सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला है? हाँ, थोड़ा बहुत, अभिमन्यु धीरे से बोला। तुम जानती हो कि मेरे लिए दिल्ली जैसी जगह पर किसी इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो वहाँ की मर्चेंट फैमिली से है और उनकी फैमिली काफ़ी सस्पिशियस है। वैसे मैंने अपने आदमियों को कह दिया है कि वो उनके बारे में और पता लगा ले। ठीक है, इशिका ने जवाब दिया। उसने बाहर की तरफ देखा तो वसुधा जा चुकी थी। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लगता है दादी सोने के लिए चली गई हैं। ठीक है, फिर तुम भी अपने कमरे में चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में हमें एक साथ एक कमरे में रहना चाहिए। मुझे अभी भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है, अभिमन्यु ने नजरें झुकाकर कहा। इशिका ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आ गई थी। रूम में आते ही वो बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लगभग 10 मिनट बाद इशिका अचानक से उठकर बैठी और उसने अपने होठों को छुआ। उसकी आंखों में बार बार वही लम्हा आ रहा था जब अभिमन्यु ने उसे किस किया था। इशिका ने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में, सब कुछ काफी एक्सीडेंटल था। लगता है दादी ने मिस्टर राजवंश के खाने में कुछ मिला दिया था। वहीं कुछ ऐसा ही हाल अभिमन्यु का था। वो करवटे बदल रहा था और नींद उसे भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में इशिका का खूबसूरत चेहरा और वही प्यारी ग्रे आईज घूम रही थी। अभिमन्यु फिर से असहज महसूस करने लगा। उसने जल्दी से कंबल दूसरी तरफ किया और गहरी सांस लेकर कहा, बस कुछ घंटे की बात है, उसके बाद दवाई का असर उतर जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैंने इस तरह से जबरदस्ती अपना फर्स्ट किस करने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा था। अभिमन्यु ने सोने की कोशिश की। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में था। अगली सुबह अभिमन्यु की आंख खुली तो एक्सरसाइज करके नहाने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा। इशिका वहां नहीं थी तो उसने राहत की सांस ली। कल रात के बाद वो उसे फेस भी नहीं करना चाहता था। वहीं इशिका को वहां ना देखकर वसुधा ने तुरंत पूछा, मेरी बहू कहाँ है? अभिमन्यु एक पल रुका और फिर बोला, कल रात वो काफी थक गई थी, सोने में भी देर हो गई थी, उसे थोड़ा और सोने देते हैं दादी। अभिमन्यु की बातें सुनकर वसुधा के चेहरे पर चमक आ गई। अभिमन्यु उनकी इस खुशी का कारण समझ पा रहा था। आगे इस बारे में कोई बात नहीं हुई और नाश्ते के बाद अभिमन्यु ऑफिस चला गया था। वहीं जब ऐशिका उठी तो वसुधा का बर्ताव थोड़ा अजीब था। वसुधा ने जल्दी से ऐशिका को अपने साथ सोफे पर बैठाया और बोली, तुम्हारे पैरों और कमर में दर्द हो रहा होगा ना, मैं ऐसा करती हूँ कि किसी मसाज करने वाली की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर और सो जाना चाहिए था। अच्छा बहू, अगर तुम ज्यादा थकी हुई हो तो फिर से जाकर सो सकती हो, कल की रात मुश्किल नहीं होगी ना तुम दोनों के लिए। वो लड़का भी थका हुआ लग रहा था, मानो ठीक से सोया ना हो। ऐशिका समझ रही थी कि वसुधा का इशारा किस तरफ है। उसने इधर उधर देखा और तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी मिस्टर राजवंश कहाँ है? वो तो काम पर चला गया, मैंने उसे मना भी किया था फिर भी चला गया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि कल रात तुम दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए और अगली सुबह वो तुम्हें छोड़कर अपने काम पर चला गया? वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। उनकी बातें बस ऐशिका को हैरान कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो वसुधा को क्या जवाब दे। तभी उन्हें बाहर काफी हलचल सुनाई दी। ऐशिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, बाहर काफी शोर हो रहा है, दादी आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर ऐशिका उठकर बाहर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उससे पहले निवेदिता जल्दी से वहां आई और बोली, मिसेज राजवंश बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? ऐशिका ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जी, निवेदिता ने जवाब दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था जिससे साफ था खबर अच्छी नहीं थी। राजवंश फैमिली में जो भी होता था उससे वो अच्छे से वाकिफ थी। निवेदिता ने धीरे से कहा, आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं मिसेज राजवंश, प्लीज खुद को स्ट्रांग रखिएगा। ऐशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी?